ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हमारे बीच में एक विशेष प्रवक्ता उपस्थित हैं, परम गौरांग दर्शन प्रभु। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे यहाँ पे। तो प्रभु जी के विषय में संक्षिप्त विवरण बता देते हैं। प्रभु जी जो हैं अभी करंटली इस्कॉन वाड़ा, जो आप सभी जानते हैं जीवी, जो वर्ल्ड फेमस है, वहाँ पे एकेडमिक्स के डीन हैं। आप सभी ने जो बीबीटी और से आपने पुस्तकें देखी होगी सुबोधनी, और कई भक्त जो है उसको डेली पढ़ भी रहे हैं, और अपने जीवन में इससे जो उनको भागवतम और चैतन्य चरितमृत और भगवद्गीता को समझने में बहुत मदद मिलती है। तो वो जो सुबोधनी है प्रभु जी द्वारा ही लिखित है। प्रभु जी एक इंस्ट्रूमेंट रहे हैं बहुत बड़े कि उस जो सुबोधनी को लिखने में। इसके साथ साथ प्रभु जी करंटली जो है बहुत सारे सेमिनार्स और अभी जीवी में बहुत सारे कोर्सेज पे डिस्कोर्सेज देते हैं जो है, जैसे भक्ति वैभव है ना, भक्ति शास्त्री, और कई कोर्सेज जो है प्रभु जी के निर्देशन में चल रहे हैं। इससे पहले जो है प्रभु जी 2008 में प्रभु जी ने VTA ज्वाइन किया इस्कॉन चौपाटी में। उससे पहले प्रभु जी IISc से पास आउट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीज जो है इंडियन कॉलेजेस जो साइंस के मामले जो है क्षेत्र में। और प्रभु जी ने बहुत सारी सेवाएं जो है पहले योगदान भी दिया जीव में, और अभी करंटली प्रभु जी जैसे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के मेंबर भी हैं। तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वो बॉडी है जो इस्कॉन के जितना भी जो आप सभी भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव देखते हैं उनके जो कोर्सेज को डेवलप करती है, उनके पैटर्न को सेटअप करती है, एग्जाम को सेटअप करती है। तो हम प्रभु जी के बहुत आभारी है, प्रभु जी ने इतना जो हमें अपना संग प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। ये भगवान की विशेष अनुकंपा रही कि प्रभु जी ने कुछ शेड्यूल ऐसा बना कि हमें जो यहाँ पे करंटली एसोसिएशन मिल पाया। अभी प्रभु जी हमें सभी ब्रह्मचारियों के लिए एक ओवरव्यू ऑफ भागवतम भी करके कोर्स ले रहे थे, जिसमें पूरा भागवतम शुरू से लेकर एंड तक प्रभु जी हमें बता रहे थे। तो हम प्रभु जी के बहुत आभारी हैं कि यहाँ पे हमें संग दिया, और आशा करेंगे प्रभु जी आते रहेंगे और संग देते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 4 द एट्रोसिटीज ऑफ किंग कंसा, टेक्स्ट नंबर 7। श्रीशुक उवाच उपगुह्यात्मजाम् एवम् रुदत्याम् दीनदीनवत् यातितस्ताम् विनिर्भर्त्स्याम् हस्ताच्छी च देकलः उपगुह्यात्मजम् दे एवम् रुदत्यादीनदीनवत् याचितस्ताम् विनिर्भर्त्स्याम् हस्ताच्चिछिदे खलः उपगुह्यात्मजाम् एवम् रुदत्यादीनदीनवत् याचितस्ताम् विनिर्भर्त्स्याम् हस्ताद् आचिचिदे खलः।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की श्री शुक वाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा उपगुह्या आलिंगन करके आत्मजाम अपनी पुत्री को एवं इस प्रकार रुदत्या रुदन करती देव की द्वारा दीन दीनवत एक गरीब स्त्री की भांति अत्यंत दीनता पूर्वक याचिता मांगे जाने पर ताम उसे देवकी को विनिर्भत्स्य भर्त्सना करके हस्तात हाथ से आचिच्छिदे बलपूर्वक छीन लिया खला उस दुष्ट कंस ने। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक सीने से लगाए हुए तथा बिलकते हुए देवकी ने कंस से अपने संतान के प्राणों की भीख मांगी, किंतु वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी को फटकारते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। कृपया दोहराएं, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक सीने से लगाए हुए तथा भिलकते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की भीख मांगी, किंतु वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी को फटकारते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। तात्पर्य, यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री की तरह बिलख रही थी, किंतु वास्तव में वे दीन नहीं थी, इसलिए दीनवत शब्द का प्रयोग हुआ है। वे पहले ही कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतएव उनसे बढ़कर धनवान और कौन हो सकता था। यहां तक कि देवतागण भी उनकी स्तुति करने आए थे, किंतु देवकी ने एक निर्धन सताई हुई स्त्री की भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि वह यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थी।
वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी हियर वंस अगेन।
मुझे बहुत प्रसन्नता है यहां पर आकर उपस्थित होकर।
टुडे वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ चैप्टर ऑफ 10th कैंटो वेयर कंसा इज डूइंग हिज एट्रोसिटीज। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स वेरियस नेफेरियस एक्टिविटीज डन बाय कंसा एंड द चैप्टर बिगिंस विद हाउ ही मिसहैंडल्ड हिज ओन सिस्टर देवकी।
ये जो चौथा अध्याय है यहाँ पर राजा कंस के अत्याचार की व्याख्या हुई है और विशेषकर कि किस तरह से उसने अपनी बहन देवकी के साथ व्यवहार किया।
हियर इट इज डिस्क्राइब्ड दैट ऑल्दो देवकी वाज क्राइंग वेरी पिटियसली दिस क्रूयल हार्टलेस कंसा टायरेंट कंसा जस्ट ड्रैग्ड दैट बेबी गर्ल फ्रॉम हर हैंड्स एंड ट्राइड टू किल हर।
तो यहाँ पर वर्णन आता है कि किस प्रकार देवकी इतने बिलकते हुए क्रंदन कर रही थी, परंतु कंस जो इतना निर्दयी था उसने फटकारते हुए बलपूर्वक उस बच्चे को झपट लिया।
कंस हैड ऑलरेडी किल्ड 6 सन्स ऑफ देवकी।
कंस ने पहले ही 6 पुत्रों का वध कर दिया था देवकी के।
एंड द 7th प्रेगनेंसी इज बिलीव्ड टू बी अ मिसकैरेज।
और जो उनका 7वां गर्भ था वो ऐसा माना जाता था कि वो गर्भपात हो गया।
एंड ऑल ऑफ यू नो यू मस्ट हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेवरल डेज द 8th चाइल्ड इज एक्चुअली कृष्णा बट वसुदेव हैज टेकन कृष्णा ऑल द वे टू गोकुल एंड एक्सचेंज्ड कृष्णा विद द बेबी गर्ल हु वाज बोर्न टू यशोदा एंड ब्रॉट हर टू कंसस जेल।
और जैसा आप जानते हैं पिछले दिनों में चर्चा हुई होगी जो 8वां पुत्र था वो कृष्ण थे और कैसे उनको वसुदेव उनको वृंदावन ले जाकर देवकी की जो पुत्री थी उससे एक्सचेंज कर लिया था।
एंड दिस वाज डन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा ओनली।
और ऐसा परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार ही किया गया था।
नाउ द गर्ल हु वाज देयर इन देवकी'स हैंड्स was not her daughter, she was Yashoda's daughter.
तो अब जो देवकी के हाथों में पुत्री थी वो उनकी खुद की पुत्री नहीं थी, वो माता यशोदा की पुत्री थी।
देवकी was sure that her son Krishna is very safe in Gokul and she was confident that he is protected nicely, but her endeavor, her crying here, her piteous lamentation here is to protect Yashoda's child.
तो देवकी पूर्ण रूप से आश्वस्त थी और उनको विश्वास था कि उनका जो खुद के पुत्र है कृष्ण वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है गोकुल में। परंतु यहाँ पर जो वो क्रंदन कर रही हैं वो माता यशोदा की पुत्री के लिए कर रही हैं।
दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट डिवोटी और वैष्णवा और वैष्णवी। ऑल्दो द डिवोटी हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी, स्टिल दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अदर्स।
तो यहाँ पर एक वैष्णव वैष्णवी का जो महान गुण है उनका उसका हमें पता चलता है कि वो हालांकि खुद बहुत सुरक्षित हैं, परंतु फिर भी वो अन्यों को वो करुणा और सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं।
Devotees are very selfless. They want to serve others. On the other hand, in contrast, Kamsa has exactly opposite nature. He was so selfish to protect his own life. He wants to kill these children of Devaki.
तो जो भक्त हैं, वो पूर्ण रूप से स्वार्थीन होते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कंस कितना स्वार्थी था कि अपने खुद के प्राणों की रक्षा के लिए उसने देवकी के सारे पुत्रों को वध कर रहा था।
And Kamsa even tried to kill Devaki also, but Vasudev intervened somehow and protected Devaki from Kamsa, and Kamsa started killing her children.
और यहाँ तक कि वो देवकी का भी वध करना चाहता था, परंतु वसुदेव ने किसी तरह उसमें हस्तक्षेप किया और उनकी सुरक्षा की।
And the Vedic scriptures teach us that five categories of people should always be protected: women, children, brahmanas, cows, and
old people.
So these five categories of people should always be protected. They should never be abused in this way.
और वैदिक शास्त्र हमें शिक्षा देता है कि ये पांच वर्ग के लोग की हमेशा सुरक्षा की जानी चाहिए: बच्चे, ब्राह्मण, गाय, स्त्री और बूढ़े वर्ग के लोग।
Here we are seeing a cruel personality, demoniac Kamsa, who was trying to abuse women and children, two of them.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना क्रूर व्यक्ति कंस, दो लोगों को बहुत ही अलग गंदे तरीके से अब्यूज कर रहा है, स्त्री का और बच्चों का।
Women are meant to be respected and protected, and children are also meant to be protected. But here Kamsa is specifically abusing them only in this context.
स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और ऐसे ही बच्चों का भी, उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। परंतु यहाँ कंस अपनी सारी शक्तियों का दुरुपयोग करके उन पर अत्याचार कर रहा है।
एंड whoever abuses women or children or brahmanas or these five categories of people, they are inviting their own ruination.
और जो भी कोई इन पर अत्याचार करता है, स्त्रियों पर, बच्चों पर, ब्राह्मण पे, पांच वर्ग के लोगों पर, वो अपना सर्वनाश खुद ही आमंत्रित कर रहा है।
इन दिस सेम चैप्टर ऑफ भागवतम द लास्ट श्लोक सेस आयुश्रियम यशो धर्मम लोकान आशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक इज One's ayu means lifespan, shriya means one's beauty, yasha, fame, dharmam, all one's religious activities, and lokan means one's higher planets, the destinations that one is supposed to achieve, and asisha, all the blessings that one has received. All this will be completely ruined if one offends great personalities.
इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया जाता है, हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं।
एंड देवकी इज नॉट ओनली अ वुमन, देवकी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, दैट कृष्णा हैड एक्सेप्टेड देवकी एज हर मदर, एज हिज मदर, सो कंसा इज अफेंडिंग हर, व्हाट काइंड ऑफ रुइनेशन एंड डिस्ट्रक्शन इज अवेटिंग हिम, टाइम विल रिवील।
और देवकी मात्र स्त्री नहीं है, वो परम वैष्णवी है, भगवान कृष्ण ने उनको माता के रूप में स्वीकार किया है। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कंस अपना कितना विनाश को करीब है, उसको आमंत्रित कर रहा है।
एंड whoever has abused and insulted and mishandled, mistreated women, directed towards, they were directed towards the path of ruination. Some examples are Ravana, out of his deep lust, wanted to mistreat Sita Devi.
जिस किसी ने भी स्त्री का निरादर किया है, किसी भी तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार किया है, तो उनका सर्वनाश निश्चित है. और इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि रावण, जिन्होंने माता सीता का अपहरण किया कामवुक के वासना के अंतर्गत.
एंड दुर्योधन, आउट ऑफ हिज रिवेंजफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स पांडवास, ही वांटेड टू इंसल्ट द्रौपदी इवन इन द बिग असेंबली.
और दुर्योधन, जो पांडवों से इतनी घृणा करता था, उनसे बदला लेने के लिए भरी सभा में उन्होंने माता द्रौपदी का निरादर किया.
एंड हियर इज कंसा, ही वाज ट्राइंग टू किल हिज सिस्टर देवकी एंड आल्सो किल्ड हर चिल्ड्रन.
और यहां पर कंस है, जो अपनी बहन देवकी को मारना चाहता है और उनके पुत्रों को भी.
एंड कंसा नॉट ओनली वाज मिसट्रीटिंग वुमेन, ही वाज आल्सो मिसट्रीटिंग चिल्ड्रन. So he killed 6 children of Devaki. So like that, whoever abused small children also unnecessarily, so they also went on the path of destruction, or they were affected. They received necessary reaction.
और कंस ने यहाँ पर देवकी के साथ ही दुर्व्यवहार नहीं किया, उनके बच्चों के साथ भी किया. और जो भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसका विनाश सुनिश्चित होता है.
Now in Srimad Bhagavatam, there were several stories that describe such demoniac people, wicked, cruel people, trying to mishandle children.
और भागवतम में कई ऐसी कथाएं आती हैं जिसमें क्रूर, निर्दयी व्यक्ति ने बच्चों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया.
One of the prominent characters amongst them was Hiranyakashipu. He tried to abuse Prahlad Maharaj. He wanted to kill Prahlad in various ways just because Prahlad was worshipping Vishnu.
और उनमें से सबसे एक प्रमुख चरित्र आता है हिरण्यकशिपु का, जिसने अपने खुद के छोटे पुत्र प्रहलाद को इतना उन पर अत्याचार किया सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रहलाद विष्णु की आराधना करता था.
The entire, his entire kingdom with thousands and millions of people were worshipping him, they were accepting him as the supreme, but there is one boy, 5-year-old boy, he is worshipping Vishnu. But that created a lot of insecurity, pride and envy in the heart of Hiranyakashipu. That he could not tolerate. Comes Prahlad Maharaj's devotional service.
तो उनके पूरे राज्य में लाखों लाखों लोग हिरण्यकशिपु की पूजा करते थे, परंतु एक 5 वर्षीय बालक जो विष्णु की आराधना करता था, उसने हिरण्यकशिपु के हृदय में इतना द्वेष, इतनी असुरक्षा उत्पन्न कर दी कि वो उसको सहन नहीं कर पाया.
Just like because this Kamsa offended Devaki. And Duryodhan and Dushyasan offended Draupadi, and Ravana offended Sita Devi. The Supreme Lord, in his forms as Krishna and Ram, killed them. Right? He punished them.
जिस प्रकार से कंस ने अपनी बहन देवकी के साथ अत्याचार किया, दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया, रावण ने माता सीता के साथ किया, तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने अवतार कृष्ण और राम के रूप में इन सब का वध कर दिया.
सिमिलरली व्हेन हिरण्यकशिपु अब्यूज्ड प्रहलाद महाराज, द सुप्रीम लॉर्ड टुक द फॉर्म ऑफ नरसिम्हदेव एंड किल्ड हिरण्यकशिपु आल्सो.
और जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार किया, तो परम पुरुषोत्तम भगवान ने नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकशिपु का भी वध कर दिया.
ऑफेंडिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन is itself a grave mistake. On top of it, if they happen to be devotees of the Supreme Lord, it's much more offensive and Krishna cannot tolerate it.
स्त्री और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना एक बहुत ही गंभीर भयानक अपराध है, और अगर वो उसके साथ साथ भक्त हैं, तो इसकी गंभीरता कई गुना और बढ़ जाती है.
So there are many other cases also.
और इसके अलावा भी कई सारे केसेस हैं.
Another child abuse case. Once Dhruva Maharaj, little Dhruva, small child, 5-year-old boy, he wanted to sit on the lap of his father.
एक और child abuse का केस, जो ध्रुव महाराज थे, वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे जब वो बिल्कुल बच्चे थे.
It is very natural for a small child to sit on the lap of his father, but Uttanapada was attached to his favorite wife Suruchi, and she abused. Out of great envy and pride, she abused Dhruva Maharaj with very nasty language.
और किसी भी बच्चे के लिए स्वाभाविक है कि वो अपने पिता की गोद में चढ़कर बैठना चाहता है, परंतु जो उनके पिता है महाराज उत्तानपाद, वो अपनी जो दूसरी पत्नी है सुरुचि उससे आसक्त थे.
एंड हियर सुरुचि वाज एनवियस ऑफ सुनीति एंड सुरुचि सेज जस्ट बिकमिंग द सन ऑफ उत्तानपाद इज नॉट ए सफिशिएंट क्वालिफिकेशन फॉर यू टू सिट ऑन द लैप ऑफ योर फादर माय डियर ध्रुवा शी सेज.
तो जो सुरुचि थी वो उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी है माता सुनीति उनसे द्वेष रखती थी, तो उन्होंने बोला कि ध्रुव सिर्फ उत्तानपाद के पुत्र होना योग्यता नहीं है उनकी गोद में बैठने के लिए.
यू हैव टू बिकम माय सन, दैट इज द क्वालिफिकेशन टू सिट ऑन थ्रोन ऑर योर फादर्स लैप.
तुम्हें मेरा पुत्र बनना होगा, ये योग्यता है अपने पिता की गोद में बैठने के लिए.
यू आर अनडाउटेडली सन ऑफ द किंग बट यू आर नॉट माय सन. That's the most important qualification for you to sit on the throne.
निश्चित रूप से तुम राजा के पुत्र हो परंतु तुम मेरे पुत्र नहीं हो, और ये सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है उनकी गोद में बैठने के लिए.
You know what she says? If at all you want to sit on your father's throne or father's lap, you should go and worship the Supreme Lord Vishnu and take your next birth in my womb. Then you can sit.
तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने पिता के सिंहासन या उनकी गोद पर बैठना चाहते हो तो तुम जाओ भगवान विष्णु की आराधना करो और अगला जन्म तुम मेरी कोख से लो, तब तुम ये तुम्हारे लिए ये संभव हो पाएगा.
सी हर एरोगेंस, सी हर प्राइड. द रिजल्ट ऑफ वर्शिपिंग विष्णु इज लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट शी कंसिडर्स दैट द रिजल्ट ऑफ वर्शिपिंग विष्णु वुड बी taking birth again, going back into birth and death cycle and taking birth for her womb from an arrogant woman like her.
To unke ghamand ki seema dekhiye, bhagwan vishnu ki aradhana se vyakti janam mrityu ke chakra se mukt ho jata hai, parantu yahan usko lag raha hai wo itni garvit hai aur itni ghamandi hai ki vishnu ki aradhana ka phal usko ye hoga ki wo uski kokh se janam lega.
So you know what happened later. Dhruva maharaj got offended and later suniti consoled Dhruva Maharaj and told Dhruva, if at all you have any desire, better you worship the Supreme Lord and he will fulfill all desires. Then Dhruva Maharaj worshipped the Supreme Lord and he also got the guidance of Narada Muni and he got the darshan of Vishnu within 6 months and Vishnu gave a benediction. We'll discuss.
तो हम देखते हैं कि कैसे हुआ. ध्रुव महाराज को कितना अपराध महसूस हुआ, वो अपनी माता के पास गए. माता सुनीति ने कहा अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा है तो तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, वो उनको पूरा कर सकते हैं. और बाद में उनको नारद मुनि का गाइडेंस मिला, उनका निर्देश मिला और 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान विष्णु के भी दर्शन किए.
एंड विष्णु सेड द स्टेप मदर सुरुचि हु ऑफेंडेड यू विल डाई इन ए फॉरेस्ट फायर.
और विष्णु ने कहा कि जो तुम्हारी सौतेली माँ है सुरुचि, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है तो इस जंगल की अग्नि में उनकी मृत्यु हो जाएगी.
ऑफ कोर्स शी मस्ट हैव रिसीव्ड गुड डेस्टिनेशन बिकॉज देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट ऑफ सुरुचि आफ्टर ध्रुव महाराज बिकेम अ डिवोटी एंड फर्दर सुनीतिस फॉरगिवनेस आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड सुरुचि. So, but still she had to undergo this kind of reaction because of abusing Dhruva Maharaj.
निश्चित रूप से उनको अच्छी गति प्राप्त हुई होगी क्योंकि सुरुचि माता के हृदय परिवर्तन हुआ था जब ध्रुव महाराज भक्त बने थे, और सुनीति माता ने भी जब उनको क्षमा कर दिया था तो उससे भी उनके हृदय में परिवर्तन आया था.
So there is another story. In the 6th canto of Srimad Bhagavatam, Maharaj Chitraketu did not have any children. So once he asked Angira Muni, can you please help me get a child? Then Angira Muni did some sacrifice and eventually Chitraketu Maharaj got one child through his first wife named Kritadyuti.
तो छठे स्कंद में एक और कथा आती है जब महाराज चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अंगिरा मुनि की सहायता से उनसे पूछा कि किस प्रकार से उन्हें पुत्र मिल सकता है. तो उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के माध्यम से जो चित्रकेतु महाराज है उनकी सबसे बड़ी पत्नी, उनके माध्यम से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ.
चित्रकेतु एक्चुअली हैड 1 crore वाइव्स. ही मैरिड 1 wife, ही डिड नॉट गेट अ चाइल्ड. ही मैरिड 2nd wife, नो चाइल्ड. 3rd wife, नो चाइल्ड. 10th wife, नो चाइल्ड. 100th wife, नो चाइल्ड. 1 lakh wives, नो चाइल्ड. लाइक दैट ही मैरिड 1 crore वाइव्स, स्टिल ही डिड नॉट हैव अ चाइल्ड.
महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां थी। उन्होंने पहली पत्नी से शादी की, उनको कोई पुत्र नहीं हुआ, दूसरी कोई पुत्र नहीं हुआ, 10वीं 100वीं 1,00,000 और ऐसे करते करते उन्होंने 1 करोड़ उन्होंने पत्नी स्वीकार की और फिर भी उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई।
इफ इन दिस वर्ल्ड इफ समथिंग इज नॉट देयर इन आवर डेस्टिनी वट एवर मे बी द अमाउंट ऑफ आवर एंडीवर वी मे नॉट गेट इट।
ये कहा जाता है अगर आपकी तकदीर में कुछ नहीं है तो आप कितना ही उसके लिए प्रयास कर लीजिए वो आपको नहीं प्राप्त होगी।
सो समहाउ ही गॉट अ चाइल्ड एंड उत्तान और चित्रकेतु वॉज गिविंग सो मच अटेंशन टू कृतज्युति एंड द न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड ही नेग्लेक्टेड रिमेनिंग 1 crore-1 वाइव्स।
तो फिर उनको किसी तरह संतान की प्राप्ति हुई और वो इतना अपना ध्यान प्रेम उस संतान और उन जिन पत्नी के द्वारा हुआ कृतज्ञता की तरफ दे रहे थे कि बाकी जितनी पत्नियां हैं 1 करोड़ में से 1 हटा दो उनको उनकी अवेला उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे।
99,99,999 वाइव्स ऑफ चित्रकेतु फेल्ट ऑफेंडेड, दे फेल्ट वी आर नेग्लेक्टेड बाय आवर हस्बैंड बाय आवर किंग, सो इट इज नॉट appropriate and the reason for this is this newborn child. They all became so envious. They formed a conspiracy.
तो बाकी 99,99,999 जो पत्नियां हैं वो अपने आप को बहुत अपराध अपने तरफ ले रही थी कि राजा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा और राजा का व्यवहार में परिवर्तन क्यों हुआ इस पुत्र की वजह से और इस पुत्र के प्रति वो इतना द्वेष हो गई कि उन्होंने उसको मारने का प्लान बनाया।
Then they poisoned the child and killed the child. Because of this infanticide or killing a small infant baby, all these 99 lakh etc. these wives lost their luster.
तो उन्होंने क्या किया? उस शिशु को poison जहर देकर उसका हत्या कर दी। तो क्योंकि उन सब ने शिशु की हत्या में भाग लिया था तो उनके सौंदर्य उनके शरीर पे जो भी कांति थी वो सब खत्म हो गई।
सो दिस इज अनदर केस ऑफ अब्यूजिंग ए चाइल्ड। सो इन दिस केस नॉट ओनली दिस वाइव्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर बिकमिंग एनवियस, देयर इज सम ब्लेम फॉर चित्रकेतु आल्सो because Chitraketu neglected all of them just because they were not mothers. Somehow naturally he was giving more time to the first wife who gave birth to the child. He was neglecting. So his neglect brought out their negative attitude so much.
तो जो इस शिशु के प्रति अपराध हुआ, जो इनका इसका abuse हुआ, उसमें इन सभी पत्नियों का 99 लाख इतने सारी जो पत्नियां थी उनका तो योगदान था ही, साथ ही साथ महाराज चित्रकेतु का भी कुछ योगदान था क्योंकि वो माता नहीं थी तो वो उनकी अवहेलना कर रहे थे।
When we behave nicely, it's quite possible that we bring out best in others also in their dealings with us. When we are abusive to others, when we neglect others, we offend others, they also tend to retaliate and then their negative side will come out. So we are also responsible for others' negative actions many times.
जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो जो दूसरों का अच्छा स्वभाव है हम उसको बाहर निकालते हैं, परंतु अगर हम खुद दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो दूसरों का भी उसी प्रकार का व्यवहार को हम आकर्षित करते हैं।
देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ किलिंग चाइल्ड द फर्स्ट कैंटो 7th chapter। अश्वत्थामा किल्ड द 5 sleeping sons ऑफ मदर द्रौपदी।
तो एक और कथा आती है भागवतम में जिसमें बच्चों का वध किया गया। पहला प्रथम स्कंद 7वें अध्याय में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र जो सोए हुए थे उनकी नींद में ही हत्या कर दी।
एंड बिकॉज ऑफ दैट कृष्णा एंड अर्जुना चेज्ड अश्वत्थामा अरेस्टेड हिम एंड समहाउ बिकॉज ऑफ द्रौपदीज मर्सी अपॉन अश्वत्थामा अश्वत्थामा वाज रिलीज्ड, यू नो दैट स्टोरी,
जिसकी वजह से भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, उसको पकड़ा, उसको प्रस्तुत किया, परंतु द्रौपदी की करुणा और कृपा से उसको छोड़ा गया। आपको ये कथा आपको पता है।
सी द ग्लोरी ऑफ मदर द्रौपदी, शी कुड फॉरगिव इवन द ग्रेटेस्ट ऑफेंडर हु किल्ड हर स्लीपिंग सन्स।
तो आप यहां पर माता द्रौपदी की महानता देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर पाए जिन्होंने सोते हुए अवस्था में उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया था.
इट्स द कॉज ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन फॉर अ मदर टू टॉलरेट चाइल्ड्स डेथ, बट शी कुड समहाउ डाइजेस्ट इट एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव सिमिलर पेन टू अश्वत्थामा मदर कृपी.
तो किसी भी महिला के लिए इससे बड़ा दर्द की बात क्या हो सकती है कि उनके सामने उनके पुत्रों का वध कर दिया जाए. और द्रौपदी माता ने किसी तरह से उसको सहा, किसके लिए, कि अश्वत्थामा की माता को उस दर्द का अनुभव ना हो जो वो जो उनको खुद को करना पड़ रहा है.
सो दैट इज द नेचर ऑफ ए वैष्णवा. Even though a Vaishnava himself or herself undergoes some trouble or tribulation or calamity, they can empathize with others. Oh, how can I give similar pain to others? I am experiencing this pain. This pain should not be experienced by others.
तो ये एक वैष्णव का स्वभाव है. हालांकि वो खुद विषम परिस्थिति में होता है, खुद पीड़ा में होता है, उस अवस्था में भी वह दूसरों के साथ उनके उनकी भावनाओं को समझ सकता है कि मैं उनको किस प्रकार से उन दर्द दे सकता हूं. तो इस प्रकार से उसका व्यवहार होता है.
Although Ashwatthama was forgiven like this by Draupadi, still Ashwatthama did not give up his negative attitude. He again released another Brahmastra to kill another child even before the child was born only. He targeted Parikshit Maharaj who was within the womb of Uttara. This is another child abuse.
तो हालांकि द्रौपदी माता ने क्षमा उनको किया अश्वत्थामा को, फिर भी उसका जो नकारात्मक रवैया था उसने उसको बदला नहीं और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया परीक्षित महाराज को, जो अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ था, माता उत्तरा के गर्भ में थे, उनका वध करने के लिए. ये एक और केस है चाइल्ड अब्यूज का.
When someone is so overwhelmed with this negative mentality, although that person is shown some forgiveness or mercy or he is accommodated in some way, still one may not give up one's negative demoniac mentality.
तो नकारात्मक मानसिकता से कोई व्यक्ति इतना ज्यादा पीड़ित होता है, उसके अंदर इतने ज्यादा विषम भाव होते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से अगर उसको क्षमा किया गया, उसको किसी ना किसी तरीके से अकोमोडेट किया गया, फिर भी इतना आसुरिक व्यवहार को वो नहीं छोड़ता.
Now there is Kamsa. Actually, after he tried to kill this Durga, baby girl of Devaki. So the Devaki's, the child in Devaki's hands, she became Durga and gave a warning to Kamsa and she left. Then Kamsa went and begged forgiveness from Devaki, and Devaki and Vasudeva forgave Kamsa.
तो अभी हम देखेंगे कि देव कंस ने उस बालिका की मार की हत्या करने का प्रयास किया जो वास्तव में माता यशोदा की पुत्री थी, देवकी के हाथ में थी, और वो फिर उन्होंने दुर्गा का रूप लिया और कंस को चेतावनी देके वो अंतर्धान हो गए. उसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगी और देवकी और वसुदेव ने उसको क्षमा कर दिया.
दिस इज द नेचर ऑफ ए वैष्णवा. दे कैन विद अ बिग हार्ट दे कैन इवन फॉरगिव द मोस्ट हीनियस ऑफेंडर्स ऑल्सो. बट द नेचर ऑफ डीमंस इज इवन आफ्टर गेटिंग दैट फॉरगिवनेस ऑल्सो दे ट्राई टू अगेन do the similar mistakes.
तो वैष्णव का हृदय इतना बड़ा होता है कि सबसे भयानक अपराधी को भी उन्होंने क्षमा कर दिया. और वहीं दूसरी तरफ आसुरिक व्यवहार भाव किस प्रकार से होता है कि उनको क्षमा करने के बाद भी अश्वत्थामा ने किस प्रकार से नकारात्मक अपना भाव बनाए रखा.
So we have seen Devaki forgiving Kamsa despite her children were killed by Ashwatthama, by Kamsa. And we also saw Draupadi forgiving Ashwatthama, although her children were killed by Ashwatthama.
तो हम देखते हैं कि देवकी ने कंस को किस प्रकार क्षमा कर दिया, हालांकि कंस ने उसके सभी पुत्रों की वध कर दिया था. और हम देखते हैं द्रौपदी ने भी अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया कि अश्वत्थामा ने उनके सभी पुत्रों की हत्या की थी.
On the other hand, we see Gandhari, when her 100 sons, Duryodhan, Dushyasan and all these people, they were killed. And somehow Krishna was instrumental in the whole Kurukshetra war, and Gandhari understood, because of you, Krishna, you supported Pandavas, so my 100 sons died. I cannot forgive you. I curse that your entire dynasty be annihilated.
और यही हम देखते हैं गंधारी का इसमें जो हुआ कि उन्होंने देखा कि उनके 100 के 100 पुत्रों का उस युद्ध भूमि पर, तो उन्होंने देखा ये इसलिए हुआ क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों की सहायता की और इससे पीड़ित होकर उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा वंश का नाश हो जाएगा.
नॉट टू मिनिमाइज गांधारी's पोजिशन, गांधारी इज ऑल्सो वेरी एक्सॉल्टेड एंड चेस्ट लेडी, शी इज एज गुड एज एन एसेटिक, बट आई जस्ट मेंशन दिस टू टेल हाउ इट इज पेनफुल फॉर अ मदर टू टॉलरेट सन्स डेथ.
तो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो गंधारी की स्थिति है उसको हम कम नहीं आंक रहे क्योंकि वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है और एक तरह से बहुत तपस्वी है, परंतु ये बात बताने के लिए कि एक माता के लिए ये कितने दर्दनाक बात है कि उनके पुत्रों का वध कर दिया जाए.
बट स्टिल देवकी एंड द्रौपदी they could tolerate their children's death and forgive the offender also. How great Vaishnavis they were.
परंतु देवकि और द्रौपदी उनकी महानता देखिए कि वो अपने पुत्रों के वध की पीड़ा को भी सह पाए और जिसने उनका वध किया उनको क्षमा कर पाए.
So this is the nature of devotees. All good qualities like tolerance, satisfaction, forgiveness, equanimity, pridelessness, all this will manifest in the heart of a devotee. Why? Because a devotee actually is performing devotional service unto Krishna by which one develops all these qualities.
तो ये एक भक्तों का हृदय होता है, उनके अंदर जितने गुण हैं, सहनशीलता, विनम्रता, क्षमा करना, संतुष्टता, ये सभी गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्तिमय सेवा में रक्त हैं।
यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते शुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सति धावतो बहि. Oh, sorry. Sanskrit shloka, no translation. I'll give translation in English. So whenever somebody is a great devotee of the Lord, all the great divine qualities of even demigods also manifest in devotee's personality, right? So the point I was trying to make is the basis of all these good qualities like tolerance, forgiveness is bhakti.
तो जब कोई भगवान का भक्त होता है तो ये सारे गुण उसके चरित्र में स्वतः प्रकट हो जाते हैं. तो ये सारे गुण क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि इन सब गुणों का आधार है भक्ति.
सो when somebody is a devotee, automatically that tolerance and forgiveness will manifest. On the other hand, when someone is not a devotee, in the midst of calamities, one will be completely devastated, depressed and dejected.
तो अगर कोई भक्त है तो वो क्षमाशीलता, सहनशीलता ये स्वतः उसके चरित्र में प्रकट होंगी, परंतु अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा, भक्त नहीं है, तो जैसी विपरीत परिस्थिति आएगी वो उसमें पूर्ण रूप से पीड़ित होगा और उस बहुत हताश हो जाएगा.
सो वी कैन सी इन द एग्जाम्पल ऑफ कृतद्युति. कृतद्युति इज चित्रकेतुस वाइफ, फर्स्ट वाइफ हु गेव बर्थ टू दैट सन. I said, right, Chitraketu had 1 crore wives. The first wife is Kritadyuti. She gave birth to son. When her son died, Kritadyuti could not tolerate it. She even blasphemed Krishna also. What kind of god you are? How can a child die before father's? Father has to die first, then the child will die. Now, child died in front of father. So she blasphemed and criticized God for the calamity that she was undergoing. Why? Because she is not a pure devotee like Draupadi or Devaki.
तो जब माता कृतद्युति जो चित्रकेतु की पहली पत्नी थी जिन्होंने जन्म दिया था उस बच्चे को, तो जब उसके बच्चों की हत्या कर दी गई बाकी पत्नियों के द्वारा, तो उनका व्यवहार किस प्रकार था वो इसको सह नहीं पाए और यहाँ तक कि वो भगवान कृष्ण पर भी आरोपण कर पके किस प्रकार के भगवान और किस प्रकार के ये प्रकृति है कि पिता के आंखों के समक्ष शिशु की मृत्यु पहले हो गई. वो इसको सहन नहीं कर पाए.
सो इट इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति दैट इक्विप्स अस विद नेसेसरी मैच्योरिटी टू सी मिजरी एज मर्सी ऑफ कृष्ण. Whenever a devotee undergoes some calamity, the devotee understands it is the supreme will and it is a result of my own past deeds. So let me not abuse anyone, let me not blame anyone, let me not point out anyone as the cause of my suffering.
तो जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति की विधि है, वो एक व्यक्ति को सशक्त बनाती है कि वो विषम परिस्थिति को भी भगवान के आशीर्वाद के रूप में देख सके. वो ये जानता है कि ये उसके पूर्व कर्मों के माध्यम से है और इसी में परम भगवान की इच्छा है, तो वो उसको स्वीकार करता है और किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, उंगली नहीं उठाता.
इवन सुनीति आल्सो व्हेन हर चाइल्ड ध्रुव महाराज वाज अब्यूज्ड बाय हर कोवाइफ सुरुचि शी कुड नॉट टॉलरेट दैट पेन. दावाग्निना दावलतेव बाला शी वाज कंपेयर्ड टू a small tender creeper in the midst of forest fire. She was feeling that pain within.
और माता सुनीति भी जब ध्रुव महाराज को इतना अपमान किया गया उसकी दूसरी पत्नी के द्वारा, तो वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाई. वो कैसा महसूस कर रही थी कि जैसे जंगल की अग्नि में एक कोई छोटा सा पौधा है, तो उनको बहुत पीड़ा का अनुभव हो रहा था अपने हृदय में.
But she never maintained any grudge towards Uttanapada. She never maintained any grudge towards even Suruchi also. The first teaching that Mother Suniti gave to Dhruva was, my dear Dhruva, never maintain any inimical attitude towards anyone who must have caused you some suffering.
परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार का ग्रज, किसी भी प्रकार की बदला लेने की भावना हृदय में बिल्कुल नहीं रखी, ना महाराज उत्तानपाद के प्रति, ना माता सुरुचि के प्रति. और जो पहली शिक्षा उन्होंने ध्रुव महाराज को दी कि कभी भी किसी से बदला लेने का भाव मत रखो, चाहे तुम्हारे कोई भी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे.
सेकेंड थिंग शी सेड, फर्स्ट थिंग वाज डोंट एनवी एनीवन इवन इफ दे अब्यूज यू. सेकेंड थिंग शी सेड वाज व्हाटएवर सफरिंग दैट वी रिसीव इन दिस वर्ल्ड is because of our own past misdeeds. Third thing she said, you want any desire to be fulfilled, worship Krishna. So a devotee understands these three things in the midst of calamities. Whoever has caused me pain, I will not contemplate some harm to them. Second, this pain is caused to me because of my own past deeds. And third, I need to take shelter of God.
तो पहली शिक्षा दी कि जिसने भी तुम्हारे प्रति अपराध किया है, कोई तुमसे द्वेष कर रहा है, तुम उसके प्रति बदला लेने का भाव मत रखो. दूसरी शिक्षा उन्होंने दी कि किसी भी प्रकार जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, ये तुम्हारे खुद के अपने पूर्व कर्मों के द्वारा हो रहा है. और तीसरा, तुम्हें कोई भी इच्छा पूरी करनी है तो तुम्हें भगवान विष्णु की शरण लो. तो एक भक्त जो विपरीत परिस्थिति में होता है, इन तीन चीजों को हमेशा याद रखता है. पहला, वो कभी भी ऐसा मनन नहीं करता कि जिसके माध्यम से वो विषम परिस्थिति आई है कि किसी प्रकार से उसको वो नुकसान पहुंचाए, ऐसा वो कभी मनन नहीं करता. दूसरा कि वो जानता है कि जो भी उसके जीवन में घटित हो रहा है, ये उसके खुद के ही पूर्व कर्मों के माध्यम से हो रहा है. और तीसरा, वो हमेशा भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है.
ए डिवोटी कंसिडर्स ऑल कैलामिटीज इन लाइफ as something which is meant for one's own purification. He doesn't develop any revengeful attitude towards anyone who may be instrumental in receiving that suffering.
तो वो जितने भी विषम परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आती है, वो उसको देखता है कि उसके शुद्धिकरण करने का मौका है. वो चाहे कोई भी माध्यम बना हो उस स्थिति को लाने के लिए, तो वो उसके प्रति कभी भी बदला लेने का भाव या नकारात्मक विचार कभी नहीं रखता.
ब्रह्मा सेस इन द 10th कैंटो, तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणं भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक. सो व्हेनेवर डिवोटी एनकाउंटर सम कैलामिटी, ही अंडरस्टैंड्स తత్తేను కంపాం సుసమీక్షమాణం భుంజాన ఏవ ఆత్మకృతం విపాకం. దిస్ ఈస్ ఎ రియాక్షన్ టు మై ఓన్ పాస్ట్ మిస్ డీడ్ అండ్ వాట్ ఐ సపోజ్ టు డూ ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ విత్ బాడీ, విత్ మైండ్, విత్ వర్డ్స్, విత్ హార్ట్, విత్ మై ఫుల్ ఎనర్జీ. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు సరెండర్ అన్ టు కృష్ణ.
బ్రహ్మాజీ ప్రార్థనా కర్తే హై దశమ స్కంద మే తత్య అనుకంపా సుశిక్షమాన. तो वो जानता है कि अगर कोई भक्त किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करता है तो वो जानता है कि उसके ही खुद के पूर्व कर्मों के द्वारा उसको इसका सामना करना पड़ रहा है. और वो क्या करता है, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने हृदय से, अपनी उसकी जितनी शक्ति होती है उसके माध्यम से वो भगवान की शरण ग्रहण करता है.
सो जस्ट बाय ब्लेमिंग समवन इन द मिडस्ट ऑफ कैलामिटी, जस्ट बाय पॉइंटिंग दैट दिस पर्सन इज द cause of my suffering, we are just wasting our time many times. And of course, sometimes blame is needed. Pointing out that somebody has done a mistake may be needed according to the necessity. So whether we point out or not point out, we should never maintain a grudge or envious feeling towards the other person. When a person is doing some mistake, he needs to be punished, and we may have to do the needful also. But that does not mean we become envious and develop hatred towards that person.
तो अक्सर ऐसी परिस्थिति में अगर हम किसी पे दोषारोपण कर रहे हैं, किसी पर उंगली उठा रहे हैं, तो कई बार हम अपने समय व्यय कर रहे होते हैं, समय बर्बाद कर रहे होते हैं. और निश्चित रूप से कई बार ये आवश्यक होता है ये बताना कि ये गलती किसके द्वारा की गई है, कोई नेसेसरी एक्शन लेने के लिए. परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उसके प्रति हम हृदय, अपने हृदय के अंदर बदला लेने की भाव या द्वेष भावना को रखें.
So we may have to do the needful to address some calamity, but we should not maintain any grudge towards anyone who may be apparently causing that calamity, because forgiveness and tolerance will terminate our tenure in this material existence. But grudge, envy and anger will continue our existence in this material world.
तो जो भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आई है उसका सामना करने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो हम करेंगे. और परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी माध्यम बन रहा है उस परिस्थिति के, उस विषम परिस्थिति के लिए, कि उसके लिए उस पर हम द्वेष भावना रखें. क्योंकि क्षमा करना और सहनशीलता, इससे हमारा जो भौतिक अस्तित्व है वो खत्म होगा. परंतु बदला लेने की भावना, द्वेष भावना, दोषापरण करने से हमारा जो भौतिक अस्तित्व है वो जारी रहेगा.
दिस इज वॉट इज बींग टॉट टू अस थ्रू वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम रिपीटेडली.
और ये शिक्षा हमें पुनः पुनः श्रीमद् भागवतम में अलग अलग चरित्रों के द्वारा प्रदान की गई है.
सो नाउ वी हैव मेनी अदर एपिसोड्स ऑल्सो. For example, Chitraketu has been cursed by Mother Parvati to become a demon named Vritrasura just because he spoke some few words of advice to Shiva.
Iske alawa alag kathaye bhi aati hain. Maharaj Chitraketu ko shaap mila Mata Parvati se kyunki unhone kuch shabd salah ke roop mein bole the Bhagwan Shiv ke liye.
So definitely giving an open feedback to an exalted personality like Lord Shiva out of some stinge of pride publicly was an offense, but for this offense one has to become a demon from the position of being a king of Vidyadhara planet.
To nischit roop se kisi mahaan itne charitra ke prati open mein aisa feedback dena thode aise garv ke karan nischit roop se ye apradh hai. परंतु इस अपराध की सजा ये मिले कि वो असुर की योनि प्राप्त करें, जो अभी राजा है विद्याधर लोक के, और वो परिवर्तित जब असुर योनि में चले जाएं, ये बहुत ज्यादा था.
ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो सी परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज वॉज कर्स्ड टू डाई विद इन 7 days फॉर ए स्मॉल मिस्टेक ऑफ गार्लैंडिंग शमीक ऋषि विद ए डेड स्नेक. Oh, I garlanded him with a dead snake. He can also do the same thing to me. I mean, he may put 2-3 snakes on me. But how can I be cursed to die within 7 days?
Okay. And here we see Parikshit Maharaj's case. परीक्षित महाराज को शाप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाए, और उनकी गलती क्या थी कि शमक ऋषि जो ध्यान में थे उनके उन्होंने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। तो अगर मैंने ये गलती की है तो कोई तुम मेरे पे सर्प डाल दो, एक नहीं 2-3 डाल दो, परंतु उनको शाप मिला 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाए।
सो बट परीक्षित महाराज हैड एब्सोल्युटली नो हेट्रेड और एनवी टुवर्ड्स शमक ऋषि और श्रृंगी, एंड चित्रकेतु हैज एब्सोल्युटली नो हेट्रेड टुवर्ड्स मदर पार्वती।
परंतु परीक्षित महाराज का बिल्कुल भी घृणा या द्वेष का भाव नहीं था शमक ऋषि या उनके पुत्र श्रृंगी के तरफ, और चित्रकेतु महाराज का कोई भी ऐसा भाव नहीं था माता पार्वती के।
एंड यू नो व्हाट, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दिस टू केसेस। परीक्षित महाराज ऑल्दो ही एक्सेप्टेड द कर्स एंड ही ऑल्सो नो दैट ओ आई हैव ऑफेंडेड दिस शमक ऋषि, बट ही नेवर वेंट एंड सेड सॉरी। ऑन द अदर हैंड चित्रकेतु वेंट एंड अपोलोजाइज्ड टू मदर पार्वती।
तो इस दोनों केस में एक थोड़ा सा अंतर है कि परीक्षित महाराज लगा मैंने अपराध किया है, उसने पूरी गलती स्वीकार की, परंतु उन्होंने उनसे जाके क्षमा नहीं मांगी, और महाराज चित्रकेतु जब उनको शाप मिला और तुरंत उन्होंने क्षमा मांगी।
सो वन डिवोटी सेड सॉरी, अदर डिवोटी डिड नॉट से सॉरी। ओके,
तो एक भक्त ने कहा क्षमा कर दीजिए, दूसरे भक्त ने कहा ये ऐसे क्षमा सॉरी नहीं बोला।
बट बोथ आर हैविंग सेम एटीट्यूड, ऑल्दो दे वर मिसहैंडल्ड और दे वर पनिश्ड इन ए वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट वे फॉर देयर स्मॉल मिस्टेक, बट दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, दे आर थिंकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर अफेक्टेड।
तो दोनों, परंतु दोनों का जो नजरिया है, रवैया है, वो बिल्कुल बराबर था कि उस विषम परिस्थिति में जब उनको छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ा उनका शाप मिला, फिर भी उस परिस्थिति में भी वो अपने बारे में नहीं सोच रहे, जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं।
हियर इन चित्रकेतुस केस मदर पार्वती फेल्ट ऑफेंडेड दैट हाउ कैन माय हस्बैंड बी पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड इन दिस वे फॉर एनी चेस्ट वुमन when her husband is criticized and in a public way in that manner, so she felt offended, and because of that Chitraketu was cursed by Mother Parvati.
To Mata Parvati unko bahut apradh laga ki kis prakar se jo Shivji hai unke pati unke prati aise shabd bole gaye, to koi bhi jo pativrata stri hai wo aise prabhavit hogi, koi bhi agar unke pati ke liye bhari public bhari sabha mein koi aise shabd bole.
Because Mother Parvati was displeased by his behavior, Chitraketu went, fell at her feet, "My dear mother, please forgive me. I am sorry." And he said, "I never meant anything wrong. I had full respect for your husband. I never meant anything wrong. But whatever you think is wrong, let that be wrong. And may I be forgiven for it. I am sorry."
So Mata Parvati को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनका व्यवहार, इसलिए महाराज चित्रकेतु तुरंत उनके पास गए, उनके चरणों में गिरे, और उन्होंने बोला कि मेरा बिल्कुल भी ऐसा भाव नहीं था कि भगवान शिव को किसी भी रूप से निरादर करना, उनके लिए मेरा पूरा सम्मान और आदर है हृदय में, परंतु फिर भी जो आपको लग रहा है मैंने गलत किया वही गलत हो, और जो भी आप दे रहे हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं।
And just because he begged forgiveness, that does not mean that Chitraketu wanted a relief from the curse that Mata Parvati has given. So he accepted the curse and he also pacified and consoled her by saying sorry.
और इसका अर्थ ये भी नहीं है क्योंकि महाराज चित्रकेतु क्षमा मांग रहे हैं तो वो चाहते थे कि उनको जो शाप मिला है उसमें किसी प्रकार का निवारण हो, उन्होंने जो भी शाप मिला उसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया, साथ ही साथ उन्होंने क्षमा मांगी।
On the other hand, we have Parikshit Maharaj. He did not beg forgiveness from Shamik Rishi, although he felt for it. I did an offense to Shamik Rishi. It was my mistake, but he did not go and say sorry. Because Parikshit Maharaj was cursed by Shringi to die within 7 days, and that news was communicated to Parikshit Maharaj by Shamik Rishi through his disciple Gauramukha with great regret. So Parikshit Maharaj thought that the sage is already so embarrassed that I am cursed in this way. If I go and say sorry to him, he will be even more embarrassed. So I don't want to say sorry to him.
तो क्योंकि जो परीक्षित महाराज को ये सूचना दी गई थी कि जो श्रृंगी के द्वारा ये उन्हें शाप मिला जो शमय ऋषि के पुत्र थे, तो शमय ऋषि ने अपने जो शिष्य हैं गौरमुखा उनके माध्यम से बहुत ही पछतावा करते हुए ये सूचना पहुंचाई थी परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज क्या सोच रहे थे कि शमय ऋषि को पहले से ही इतना पछतावा हो रहा है और अगर मैं जाके क्षमा मांगूंगा तो उनके लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो ये सोचते हुए वो कभी भी उनके पास नहीं गए क्षमा मांगने।
इवन दो दिस चित्रकेतु एंड परीक्षित वर मिसट्रीटेड एंड दे वर पनिश्ड इन अ वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट मैनर बाय अदर पीपल, दे वर नॉट थिंकिंग व्हाट अब्यूज हैज डन टू देम। They were only empathizing with others. Oh, how what pain these people have undergone. Let us go say sorry. Let us go and not say sorry. So they were thinking about others' emotions more than their own emotions.
तो हालांकि महाराज चित्रकेतु परीक्षित महाराज उनके प्रति ऐसा व्यवहार हुआ कि उनकी गलती के अगर प्रपोर्शन देख रहे उससे बहुत बड़ी मात्रा में उनको शाप दिया गया, उस परिस्थिति में भी वो अपनी भावनाओं से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं का आदर कर रहे थे, उनसे साथ एम्पथाइज कर रहे थे और उनके बारे में सोच रहे थे।
दिस इज द नेचर ऑफ ए वैष्णव।
ये वैष्णव का स्वभाव है।
ए वैष्णव डज नॉट कंसिडर वन्स ओन डिफिकल्टीज एज सीरियस प्रॉब्लम्स, बट ही कैन नॉट टॉलरेट अदर्स डिफिकल्टीज। ही इज वेरी एम्पथेटिक, सिंपथेटिक एंड वेरी सेंसिटिव।
कैन यू रिपीट?
A Vaishnava is very empathetic and sympathetic and sensitive towards other people. He doesn't consider what kind of problems he himself is undergoing.
तो वैष्णव बहुत ही संवेदनशील होता है जो अन्यों की भावना है उनके प्रति, वो इस बारे में इतनी कदर नहीं करता कि औरों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया।
So that's what we see in all these cases. Draupadi, Devaki, Parikshit, Chitraketu. And we have also in the beginning seen many people who abused women, many people who abused children, right? And there are some devotees who were abused in certain way, but the devotees were tolerant and forgiving to other people, but the devotees, people who are not devotees, they were not tolerant, they were not forgiving.
तो हम यहाँ देखते हैं अलग-अलग चरित्रों से द्रौपदी, देवकी, फिर महाराज परीक्षित, महाराज चित्रकेतु किस प्रकार से उनका व्यवहार, और हमने शुरू में देखा कि उनका क्या शय होता है कि जो किसी भी स्त्री या बच्चों के साथ अब्यूज करते हैं किसी भी प्रकार का। फिर हमने ये भी देखा कि एक भक्त का क्या व्यवहार रहता है उस विषम परिस्थिति में, और जो भक्त नहीं है, अभक्त है, वो इन सबको सहन नहीं कर पाता।
एंड वी हैव ऑल्सो सीन प्रहलाद महाराज, ही वॉज अब्यूज्ड बाय हिरण्यकशिपु. He tolerated all those atrocities done by Hiranyakashipu, and after Hiranyakashipu died, Prahlad Maharaj offered a prayer to Narasimhadev. Can you please give some mercy to my father? So he was asking for mercy for his father who tried to kill him.
तो यहाँ प्रहलाद महाराज का व्यवहार भी देखते हैं किस प्रकार से उनके साथ जो जो किया हिरण्यकशिपु ने, उन्होंने उनको सहा, और जब भगवान ने उनका वध कर दिया तो ऐसे व्यक्ति जो उनको मारना चाहता था उनके लिए वो कृपा की याचना मांग रहे हैं भगवान नरसिंहदेव से।
टू कंक्लूड एंड टू समराइज द होल डिस्कशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ ऑल दीज वैष्णव क्वालिटीज इन ए डिवोटी इज बिकॉज ऑफ वंस भक्ति एंड टू कृष्ण। कृष्ण भक्ति इक्विप्स ए डिवोटी विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड क्वालिटीज।
तो सारांश रूप में इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करने के लिए कि जितने भी वैष्णव ये सारे गुण हैं, ये सब का आधार होता है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति ही भक्त को सशक्त बनाती है, इन सब गुणों से आभूषित करती है।
Whenever some calamities or reversals or difficulties come in the life of a devotee does two things. Number one, externally he addresses the situation according to the time, place, circumstances. Internally, the devotee reconciles the situation as a result of one's own past deeds. Second, it is sanctioned by the Lord. Not a blade of grass moves without the sanction of the Lord. And third, what am I supposed to do in this context? Just take shelter of Krishna. Continue my bhakti.
तो जब भी किसी के भक्त किसी के जीवन भक्त के जीवन में ये विषम परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो वो दो चीजें करता है। बाह्य रूप से समय काल परिस्थिति के अनुसार उसको उससे डील करता है, उसको एड्रेस करता है, और आंतरिक रूप से वो कैसे रिकंसाइल करता है, वो समझता है कि ये उसके पूर्व कर्मों के माध्यम से आई है। दूसरा, भगवान ने इसको इसमें अनुमति दी है, इसको सैंक्शन किया है, तो उसको सहता है। और तीसरा, वो क्या करता है, आंतरिक रूप से भगवान कृष्ण की ही शरण लेता है और भक्ति के विधि को में लगा रहता है।
Although we externally address the circumstances which are causing some difficulties to us, we may even handle devotees or handle our people in general in certain way because they are creating some trouble, but internally devotee understands it's all arrangement of the Lord and it's because of my own past deeds and I just have to take shelter of Krishna and I should not maintain any grudge or hatred towards anyone.
तो कोई भी परिस्थिति को बाह्य रूप से वो हैंडल करता है, जैसे कोई हालांकि भक्त हो चाहे जितने भी लोग हो जो भी माध्यम बने हैं, परंतु आंतरिक रूप से वो जानता है कि ये इसमें भगवान ये कृष्ण का ही प्रबंध है और भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करते हुए भक्ति में लगता है और किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखता या बदला लेने की भावना नहीं रखता।
एंड दिस एटीट्यूड मेक्स वन एलिजिबल टू टेक कृष्णस मर्सी, गेट कृष्णस मर्सी,
और ये रवैया उसको योग्य बनाता है भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए।
All these great examples and qualities are described in this book, Srimad Bhagavatam. So if we regularly study this book and hear this Srimad Bhagavatam, we will be imbibing these qualities.
तो ये सभी जो गुण हैं, ये सभी जो कथाएं चरित्र हैं श्रीमद् भागवतम में इनकी व्याख्या की गई है, और अगर नियमित रूप से आप इनका श्रवण करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो ये सब हम अपने जीवन में भी उतार पाएंगे।
I'll conclude with one shloka. प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण शलिलस्य यथा शरत। When the sound vibration of Srimad Bhagavatam enters the ear holes of a sincere hearer, that will completely purify the heart of all these kinds of negative tendencies and equips the heart with devotion and maturity to live in this world.
तो मैं इस श्लोक से कंक्लूड करता हूँ, जैसे श्रीमद् भागवतम की ये दिव्य ध्वनि कर्णों के अंदर एक सिंसियर जो हियरर है उसके कर्णों के अंदर प्रवेश करती है, तो हृदय के अंदर ये सारे जितने गलत भाव है इनको पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है और भक्ति भावना को स्थापित करती है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस, वी कैन टेक क्वेश्चंस नाउ, टाइम इज देयर। यस प्रभु, प्लीज, टू क्वेश्चंस। यस प्रभु, आई सॉ हिम फर्स्ट।
थैंक यू प्रभु फॉर द एनलाइटनिंग क्लास। सो प्रभु जी, एज यू वर मेंशनिंग इन द केस ऑफ चित्रकेतु महाराज, लाइक when he gave advice to Lord Shiva, so in that case we say that it was a very small mistake, but he addressed the problem in public. That was the main problem because of which Parvati got offended and later on cursed Chitraketu Maharaj. But we see in our case, like whether we address, if we have to blame some devotee, there is some fault, whether we address it in right manner or we address it in a wrong manner, we see that the devotee is ultimately hurt, and that is also not right. So how to, that this is a very complex situation. In one case we have to blame also, and in the other side we see that devotee is hurt, whether our way of dealing with the problem is right or whether it is wrong. So in both the cases it happens. So what should be the right course?
अगर हिंदी में भी आप अनुवाद करें संक्षिप्त।
You can ask in Hindi, he's saying. Just summarily you ask in Hindi.
तो चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में हम ऐसा देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज ने ने शिवजी को एक एडवाइस दिया जो कि पार्वती मैया जिससे ऑफेंड हो गई, उनका कारण ये था ऑफेंड होने का क्योंकि उन्होंने पब्लिक में इस बात को बोला था। लेकिन हम अपने भक्त समाज में ऐसा देखते हैं कि अगर हम किसी को कोई गलती बताते हैं, चाहे वो हम किसी अथॉरिटी के थ्रू बताएं या डायरेक्टली बताएं, पर लेकिन कहीं ना कहीं भक्त को पीड़ा होती है उस गलती पता चलने पे, तो क्या हमारा सही तरीका होना चाहिए? कभी भी अगर हम ऐसे ब्लेम हमें देखते हैं तो कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए?
as much as possible, we need to speak in an unagitating way. That is the austerity of speech. So there is anudvega karam vakyam satyam priyahitam chayat svadhyaya bhyasanam chayiva vangmayam tapa uchyate. So we should speak the truth in a way that is little digestible by people.
तो जहां तक संभव है हमें जो हमारी जो वाणी है ये अनुद्वेग ये वाणी की तपस्या है कि इस प्रकार से सत्य को बोलना है कि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट ना हो अनएजिटेटिव वे कि उसको और उकसाने वाली भाषा ना हो उकसाने वाली टोन ना हो
बट स्टिल द वेरी फैक्ट दैट वी आर सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर दैट पर्सन टू एक्सेप्ट He could be hurt. However, sometimes it becomes a great necessity to communicate certain things to that devotee by being his genuine well-wisher. So, first thing is, we need to have our motivations correct. I am giving this correction to this person or I am just trying to help this person. What is my motive? I am just pointing out the fault in him to pull him down. Or discourage him, or I am just trying to help him by doing this with a well-wishing heart. So when the intention is proper, the expression will follow the intention more or less, and even if it doesn't follow, the tone may be a little heavy, people can sense the intention. Is he desiring to pull me down, or is he genuinely concerned about me? So when the emotion and expression are nicely molded, by our mature practice of bhakti, then the other person generally may not get offended. But still, if he's hurt, it's not in our hands. We understand that we are not the controllers. We are not Krishna.
परंतु फिर भी चाहे कैसे भी भाषा बोलें, ये अगर हम इस तरह से बात करें जो हमें जानते हैं कि सामने वाले के लिए स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से हर्ट होता है. तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो भाव है उद्देश्य है वो बात करने का वो क्या है और हमें ये उद्देश्य रखना चाहिए कि हम उनका वास्तविक हितैषी बने. तो अगर हमारा ये भाव है वास्तविक हितैषी बनना बजाय इसके कि हम उसको नीचे गिराना चाहते हैं सिर्फ उसके अंदर जो दोष है उसके ऊपर उंगली उठा के नीचे गिराना चाहते हैं तो इसलिए अगर वास्तविक हितैषी बने तो अगर हमारा ये भावना सही होगी तो जो हमारा अभिव्यक्ति होगी वो भी किसी ना किसी रूप से उस हमारे अच्छे उद्देश्य को फॉलो करेगी और ये सब
सो इमोशन शुड बी वेल विथ अ वेल विशिंग हार्ट लाइक ए सुहृद सुहृदम सर्वभूतानम इमोशन शुड बी वेल विशिंग एक्सप्रेशन शुड बी अनएजिटेटिंग अनुद्वेगकरम वाक्यम So this emotion and expression are there in our hands. The other person's reaction, it's not in our hands. So we'll do our best and hope for the best. Pray to Krishna.
तो जो हमारी भावना है और जो हमारी अभिव्यक्ति है वो हमारे हाथ में है. हमारी भावना होनी चाहिए उसका सुहृद उसका हितपरम हितैषी बन के और जो उसकी अभिव्यक्ति है वो भी हमारे नियंत्रण में है. परंतु उसका कैसे उसके रिस्पॉन्ड करेगा उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. तो हमें अपना पूर्ण बेस्ट करना है अपने भावनाओं और अपनी अभिव्यक्ति को सही रूप से प्रस्तुत करना.
कृष्ण ट्राइड हिज बेस्ट टू ट्रांसफॉर्म दुर्योधन बट दुर्योधन वाज नॉट हियरिंग सो वार वाज इनेविटेबल.
तो भगवान कृष्ण ने अपना पूरा प्रयास किया दुर्योधन को समझाने का परंतु दुर्योधन का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ.
Another small side point in this context, we may see some mistake in other people and we think that they may need correction, they may need feedback. Probably it could be imposition of our own consciousness on their and their activities. Probably they are not doing such a grave mistake. I am perceiving it. We should also give a benefit of doubt before correcting or giving a feedback to other devotee. That there may be some genuine reasons for doing what he's doing. Or it could be my misunderstanding also. But it is confirmed. Then you move ahead with this kind of consciousness.
और एक और बात यहाँ पे जो चर्चा में आती है कि कभी कभार हमें लगता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति गलती कर रहा है, उसको फीडबैक देना आवश्यक है, परंतु कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो चेतना है हम दूसरे पर थोप रहे हो, क्या पता उसकी गलती इतनी बड़ी ना हो कि हमें ये सब करने की आवश्यकता पड़े। तो हमेशा हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, और जब बिल्कुल कंफर्म हो तभी ये सब स्टेप्स जो मैंने बताए इसको लेना चाहिए।
मेक सेंस? हरे कृष्ण। रोजी, माइक।
हरे कृष्ण भाजी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन बाय स्मॉल परपटो शीला प्रभुपाद, वेरी एंथुसियास्टिक। आई कैन आस्क इन हिंदी?
यू आस्क इन हिंदी, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, आई कैन स्पीक प्रॉपरली बिट्स एंड पीसेस।
तो समटाइम्स जो आजकल अभी हो रहा है, जैसे एक बच्चे का गर्भ में गर्भपात का हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, या कई लोग सेक्स डिटरमिनेशन के लिए उसको किल कर देते हैं, और वो शायद जब हम भक्ति में नहीं थे वो हमसे भी हुआ, तो उसके रिएक्शंस लेने पड़ेंगे जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए किल करते हैं बच्चों को, कि भाई उनको एक बेबी बॉय चाहिए या एक गर्ल चाहिए, या बेबी के लिए ही ज़्यादा होता है, और समटाइम्स दे नीड, मतलब उनको चाहिए कि भी हमें बेबी चाहिए, तो दे गो आउट अब्रॉड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्च करते हैं उसके लिए, और एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए, एक कि भाई हमको सिर्फ एक बेटा ही चाहिए, और उसके बाद वो आर्टिफिशियल तरीके से उसको जन्म देते हैं, मतलब उसको पहले स्टोरेज करते हैं, उसको फिर करके उसकी कोई प्रोसेस है, बट दिस इज लीगल इन आउट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट लीगल इन इंडिया। तो दैट इज दिस एक्टिविटीज गोइंग ऑन, तो ये क्या पाप है जो उसको किल करते हैं, या जो इस तरह का वो लॉज ऑफ नेचर, कुदरत के अगेंस्ट इस एक्टिविटीज को कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग और राइट? और एक चीज और, वो पूरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसको ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उस बच्चे को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं कि भी ये काल अब उस बच्चे के लिए ठीक है, तो फिर दैट्स वाई समटाइम्स नीड, कि फिर भगवान की जरूरत ही नहीं है, तो सब कुछ उन्होंने अपने ग्रह को, एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया कि भाई ये अब ग्रह ठीक है, अब सूर्य की चाल यहां है, या इस नक्षत्र की चाल यहां है, दैट्स ओके, तो दैट्स गोइंग ऑन। तो व्हाट वी डू,
आई नेवर न्यू ऑल दिस, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ऑनेस्टली आई एम नो वन टू कमेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स, आई हैव नो एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग और इवन इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, प्रोबेबली यू कैन आस्क सम मोर सीनियर डिवोटीज हु माइट बी अवेयर ऑफ ऑल सच प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो मच अबाउट इट।
बट किलिंग किलिंग ऑफ जो गर्भ में हत्या जो करते हैं, सेक्स दैट इज टेक रिएक्शंस,
या दैट इज नॉट अप्रूव्ड इन दिस।
माय सेकंड क्वेश्चन, समटाइम्स वी हैव ब्लेमिंग, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे साथ ऐसी चीजें जो वी आर प्रोसेस इन द भक्ति, ठीक है उसको प्रयास करते हैं, कई बार हम उसको सहन कर ले, तो लेकिन सहन कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बनी रहती है, वो कहीं ना कहीं हम द्वेष की भावना लेके चलते हैं, तो अगर अपने साथ नहीं लेकिन अपने कोई बच्चे के साथ या अपने कोई परिजन के साथ ऐसा होता है, और उसमें किसी और का हाथ होता है कि भाई ये इसके कारण हुआ है, तो वी आर प्रैक्टिसिंग, मतलब हमें ब्लेमिंग की एक आदत होती है, हम ब्लेमिंग करे जा रहे हैं, क्योंकि वो भी अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो इसके कारण हुआ है, तो उस स्थिति में हम लोगों को, एक भक्त को, एक या जो साधक है उसको क्या करना चाहिए?
सो टू माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रभुजी वाज आस्किंग इज लाइक हाउ डू वी हैंडल सर्टेन सर्कमस्टेंसेस विच आर क्वाइट प्रोवोकिंग एंड वी मे फेल टू अप्लाई this tolerance and forgiveness in certain circumstances, and how do we apply, that's what is your question basically, sometimes we fail, okay, although externally at expression level we may be forgiving or tolerant, But emotion level, some grudge and some frustration is still pending. Right? And sometimes at expression level, we are intolerant, but internally, we are okay. Sometimes it also happens. At the spur of the moment, you may say, "Hey, aisa karna chahiye." Arey, why did I unnecessarily say? Internally, you didn't feel so bad. So sometimes there is a difficulty in implementing, in imbibing all these principles and demonstrating all these principles. But if you have that sincere intent to improve and cultivate these Vaishnava qualities, one day we will make it. So I say three things generally: desire, endeavor and prayer. First, we should have a desire to cultivate these Vaishnava qualities, right, as exemplified by all these great souls. And we should endeavor to cultivate them. They may not manifest overnight. We should endeavor for it. We should try. Today we could not be tolerant. So tomorrow let me try to be tolerant. Right? After 10 days I may cultivate it, or after 1 year I may cultivate it. So we should be hopeful and we should pray, "Krishna, please give me the ability to tolerate all these provoking situations." Right? So by this desire, sincere desire, prayer and endeavor, one day we'll make it.
तो कई बार हमारी समस्या होती है भावनाओं के स्तर पर और अभिव्यक्ति. तो कई बार अभिव्यक्ति को हम नियंत्रित कर लेते हैं, परंतु भावनाओं में किसी ना किसी रूप से द्वेष या ग्रज की भावना रह जाती है. और कई बार उल्टा होता है कि अभिव्यक्ति ठीक नहीं होती, कोई कुछ झगड़ा हुआ उस क्षण हमने कुछ बोल दिया, परंतु भावना के रूप में हम उसको कैरी नहीं करते. तो इसके लिए प्रयास करें. प्रभु जी कह रहे हैं इसके लिए मैं तीन चीजें बताता हूं. पहला है इच्छा, दूसरा है प्रयास और तीसरा है प्रार्थना. तो सबसे पहले इच्छा विकसित करें इन वैष्णव गुणों को विकसित करने की, भागवतम में जितने चरित्र हैं इनका श्रवण और अध्ययन के माध्यम से. और उसके बाद प्रयास करें इन गुणों को अपने जीवन में लाने का. ये एक रात, ऐसा नहीं है कि एक रात में पूरा परिवर्तन हो जाएगा. प्रयास करते रहें, कभी 10 महीने, 1 साल, इस तरह से प्रगति होती रहेगी. और अगर ऐसे प्रयास कर रहे हैं और फिर भी अगर फेल हो रहे हैं, तो प्रयास करते रहें और साथ ही साथ प्रार्थनाएं भी करें. तो ये तीन स्टेप है, पहले डिजायर, दूसरा प्रयास और तीसरा प्रार्थना.
शुड एंड हियर 9:27. हां, पर्सनली वी कैन डिस्कस. आई थिंक इट्स बी ऑन टाइम. थैंक यू. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
श्री गौरांग दर्शन प्रभु की. Sab chanting one time Hare Krishna Mahamantra. We would like to thank Prabhuji and request him for his more and more of association, Nectarian Association. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki.